ओम शांति। हम सभी के बीच में इस ईश्वरीय यज्ञ का बहुमूल्य रत्न, दिव्य रत्न, अति तेजस्वी रत्न उपस्थित हैं, परम आदरणीय सरला दीदी जी। हम सब एक हाथ की अव्यक्त ताली से दीदी जी का अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत करते हैं। आज सवेरे बाबा ने वरदान में अंतिम महावाक्य में कहा कि जो सदा खुश है वही खुश नसीब है। हम सब के बीच में एक ऐसी हस्ती उपस्थित है आदरणीय दीदी जी, जिन्होंने अनेकों के जीवन को खुश नसीब बनाया है। हम जोरदार तालियों से दीदी जी का अभिनंदन करते हैं। बचपन से ही आप बाबा के हैं, 50 से भी अधिक वर्षों की आपकी समर्पित जीवन यात्रा है। मेहसाणा और उसके आसपास के अनेक सेवा केंद्रों का आप सफल संचालन कर रहे हैं। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की सेवाओं को जो हम देश और विदेश में खुशबू फैलाते हुए देख रहे हैं, उसमें अहम भूमिका हमारी परम आदरणीय दीदी जी की है। आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। दादियों की अति समीप से पालना लेने वाली महान 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 सौभाग्यशाली पद्मा पद्म भाग्यशाली महान आत्मा आज हम सब के बीच में विराजमान है। हम सब सुनेंगे इसी स्मृति के साथ कि बाप दादा आज दीदी के द्वारा बट्टी के निमित्त हमें जो प्रेरणाएं दे, हम बहुत एकाग्रता और इंटरेस्ट के साथ उसको स्वीकार करेंगे। आदरणीय सरला दीदी जी,
ओम शांति। आज की इस खुशनुमा संध्या में सर्वशक्तिवान बाप दादा और पूर्वज दादियों की सूक्ष्म उपस्थिति में दादी जी का ये पुण्य स्मृति मास चल रहा है, उसमें आप सभी बाबा के विशेष पद्मा पद्म भाग्यशाली बच्चे तपस्या के लिए पधारे हैं। दादी जी वो दिव्य विभूति थी जिन्होंने स्वयं को नियम और मर्यादाओं में बांध कर रखा, और जैसे वो स्वयं चलती थी वैसे ही हम सबको भी उन नियम मर्यादाओं में बांध कर रखा, चलना सिखाया, आदर्श जीवन बनाया। अनेकों को प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति कैसे बने, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस कैसे रखें, ऐसी कलाएं सिखा करके उनके जीवन में सच्चे सुख और शांति की अनुभूति कराई। और कुमारों के लिए तो हमेशा कहा जाता है कि कुमारों की, बोलिए, कुमार का दादी। हमेशा दादी इतना दिल से जिगर से कुमारों को प्यार करती थी, याद करती थी। ऐसे श्रद्धे दादी जी के स्मृति मास में आप सभी शांति वन के इस पवित्र वातावरण में जहां अहर्निश योग साधना तपस्या के कार्यक्रम चलते रहते हैं, जिसके एक एक कण में वो पवित्र प्रकंपन बसे हुए हैं, जिस भूमि पर दादियों ने तीव्र गहन साधना की, ऐसी साधना की इस तपस्वी भूमि पर जहां चारों ओर पवित्रता के प्रकंपनों की धारा बहती हो, उस वातावरण में आप सभी बठी करने के लिए पधारे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का खूब 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 दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। ऐसे तो बठियां हमेशा सेंटर्स पर भी रखी जाती हैं। सेंटर पर भी आप सब बठी करके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते हैं, लेकिन फिर भी अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल करके आप इस भूमि पर तपस्या के लिए पहुंचे हैं, तो मैं समझती हूं जरूर आपने कोई अपने जीवन का, इस बठी तपस्या का कोई विशेष लक्ष्य निश्चित किया होगा। मुझे याद आता है कि हम लोग जब बठी करने के लिए आते थे और अभी भी आते हैं, तब पहले से ही मन को एक दिशा दे करके लक्ष्य निश्चित करते कि इस बारी बठी में इस स्वरूप का अथवा इस स्थिति का गहरा अनुभव करना है। आप सब में से कोई है जो लक्ष्य लेकर के पक्का करके यहां बठी करने पहुंचे हैं? हाथ खड़ा करेंगे। थैंक यू, मेजोरिटी है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्रगति चाहता है और प्रगति का आधार है परिवर्तन, और परिवर्तन के लिए आवश्यकता है महसूसता की शक्ति की, रियलाइजेशन की। जब तक हमें कोई बात खुद से महसूस नहीं होती है, तब तक परिवर्तन नहीं आता है। ये वो भूमि है जहां पर आप एकांत में बैठ करके बड़ी गहराई से अपने आप को चेक करेंगे और उन प्राप्तियों के लिए कंप्लीट मौन रख करके गहरा अभ्यास करेंगे। उसके लिए, अनुभूति के लिए आप तीन शब्दों पर ध्यान देंगे। इस बठी में हमें गहनता और नवीनता, तो सूक्ष्म में भी जाना है, गहनता है, महानता है और महीनता है। गहनता से मतलब है, क्लासेस आप सब ने बहुत सुने हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो दूसरों को भी क्लासेस कराते हैं, पुराने बाबा के बच्चे हैं। लेकिन हम भट्टी के अंदर गहन, चाहे आपका सब्जेक्ट विषय स्पष्ट हो रहा हो या आपको योग के किसी विषय पर गहरी अनुभूति कराई जा रही हो, उसके डेप्थ में जाने का लक्ष्य रखेंगे। इसकी गहराई क्या है, इन शब्दों में गहराई कौन सी छुपी हुई है, और साथ साथ सूक्ष्मता को, उस सूक्ष्म भाव को जब आप कैच करेंगे तब नवीनता का अनुभव कर सकेंगे। ये आपका लक्ष्य इन 3 दिनों में भट्टी के दौरान हर क्लास में कि मुझे गहनता, सूक्ष्मता और नवीनता का अनुभव करना है। अब भट्टी का जो विषय है संपन्नता से, संपन्नता हेतु बेहद की वैराग्य वृत्ति। संपन्नता शब्द समय की समीपता को सिद्ध करता है। चारों तरफ का वातावरण जब हम देखते हैं तब प्रकृति को आप देखो रौद्र रूप धारण किया हुआ है। हिंसा अति में पहुंची हुई है। विकारी तमोगुणी वृत्तियां जिन्होंने हद को तोड़ दिया है, वायुमंडल तमोगुणी बना हुआ है। हर आत्मा दुखी और अशांत है। ये सारे सिग्नल इस बात को सिद्ध करते हैं कि अभी अति का समय है, और अति निशानी है अंत की। हम सब का लक्ष्य है हमें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनकर के घर जाना है। तो जब समय समीप पहुंच चुका है, आप में से कोई ऐसा है जिसको ये अनुभव होता हो कि नहीं अभी हम समय के समीप नहीं है? सब इस चीज को महसूस करते हैं कि अभी हमारे पास समय बहुत थोड़ा है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, और इस थोड़ी की थोड़ी में भी इस आत्मा पर, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं है किस घड़ी ये आत्मा पंछी उड़ जाए। तो जब हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है, तो अपनी संपन्न स्थिति को बाप समान बनाने के लिए हमारा इतना दृढ़तापूर्ण पुरुषार्थ चल रहा है। सभी बाबा के बच्चे वर्तमान समय देखने में आता है, सबको पुरुषार्थ की लगन है, फिर भी लेकिन आता है। उस लेकिन शब्द को हमें इस भट्टी में समाप्त करना है। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा वर्तमान समय ब्राह्मणों से चाहता है अब हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। ये आधार है संपन्नता का, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं है तब तक त्याग संभव नहीं है, और त्याग के बिना तपस्या संभव नहीं है। जिन्होंने संन्यास किया उनकी अगर हम हिस्ट्री उठा करके देखें तो हर एक को पहले वैराग आया है। राजा भर्तृहरि को देखो, उसको अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, लेकिन जब उसको पता पड़ा कि इसका किसी और के साथ प्यार है, उसे अंदर से वैराग आया, और ऐसा वैराग आया कि घर बार राजपाट सब छोड़ करके जंगल में चला गया। राजा सिद्धार्थ को देखो, उसने मृत्यु को देखा, वैराग आया, राजभाग छोड़ दिया। 5 वर्ष का बालक ध्रुव, मां ने जब उपा की गोद से उसको हटा दिया, वैराग आया, अंदर से वो चिराग जला और चल पड़ा प्रभु प्राप्ति की खोज में, और जाकर के वो कठिन साधना की, तपस्या की और परमात्मा को प्राप्त किया। अब अगर हम अपने यज्ञ की तरफ देखते हैं तो हमारे यज्ञ के फाउंडर फादर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, बाबा को भी सबसे पहले वैराग आया, और उस वैराग के कारण से जिन हीरो के व्यापार में बाबा रात दिन लगा हुआ था, अब बाबा को वो हीरे पत्थर दिखाई देने लगे। जिन संबंधियों के साथ था वो स्वार्थी और विनाशी दिखाई दिए। दुनिया अब ये बदलने वाली है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। जैसे जैसे बाबा को अंदर से ये प्रेरणा आती गई, ऐसे बाबा का वैराग्य बढ़ता गया, और उस वैराग्य का परिणाम ये आया, बाबा को एकांत अच्छा लगने लगा, और उस एकांत में बाबा इतना गहरे मनन चिंतन में चले जाते थे, स्वयं को खोजते थे, स्वयं के साथ बातें करते थे, उसकी अनुभूति की, और एक धक से जो इतना बड़ा हीरे का व्यापारी, जिसकी समाज के अंदर इतनी मान और प्रतिष्ठा थी, एक धक से बाबा ने छोड़ दिया समर्पित बुद्धि। और ऐसा बाबा का त्याग था जो उसके बाद कभी भी बाबा के मुख से ये शब्द नहीं निकले, मैंने कितना बड़ा त्याग किया है। अब इन दोनों ने जो त्याग किए, चाहे राजाओं ने और बाबा ब्रह्मा ने, उन दोनों के वैराग्य की भूमिका में सबसे बड़ा अंतर ये रहा, उन्होंने व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति के कारण से वैराग आया और त्याग किया। बाबा को भी इनों से वैराग आया, लेकिन बाबा को साथ साथ यथार्थ और सत्य नॉलेज था, ज्ञान था, जिस ज्ञान ने अंतर चक्षु को खोल दिया था। उस ज्ञान के आधार पर बाबा किसी परिस्थिति के वश नहीं थे, आराम से अपनी लाइफ में जी रहे थे, लेकिन ज्ञान की जब जागृति हुई और उस नेत्र से जब बाबा ने खुद को और विश्व को देखा, उस अंदर के वैराग्य ने एक झट से बाबा को वैराग बाबा में आया, और वो त्याग करके बाबा ने उस समय पर जो तपस्या की है, जो आज वर्षों ज्ञान में चलने के बाद भी वो तपस्या का आनंद नहीं ले पाते हैं, जो बाबा ने उस समय लिया, उसका कारण था बाबा की, शिव बाबा के साथ अंदर की लगन, जिस लगन ने अंदर के अंधकार को समाप्त कर दिया। लगन ने अगन को पैदा किया, उस अगन ने जो भी पुरानी कमजोरियां थी, संस्कार स्वभाव थे, उन सब को भस्म किया। बाबा वो पवित्र और दिव्य आत्मा के रूप में अपने आप को महसूस करने लगे और महसूस करते करते बाबा ने इस चीज को स्वीकारा, मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, मैं इस साकार सृष्टि का रचयिता, ये मेरी रचना है, मेरे बच्चे हैं। और उस बाबा की वृत्ति ने बाबा के सामने कितने पेपर आए, हम सब उससे परिचित हैं, लेकिन किसी भी पेपर में बाबा की स्थिति को डाउन नहीं किया, किसी भी पेपर में बाबा को क्वेश्चन मार्क नहीं आया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। और बाबा तो अकेला था। आज हम ब्राह्मणों का कितना बड़ा संगठन है, तब भी बाबा ने कभी ये नहीं सोचा मैं अकेला हूं। हमेशा बाबा ने कहा वो बैठा है, वो करा रहा है। उस अंदर के निश्चय ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बाबा की स्थिति को निश्चिंत रखा। और निर्विघ्न रखा। ये था बाबा का प्रैक्टिकल जीवन। फाउंडेशन क्या था? बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य हम किसको कहेंगे? क्योंकि वर्तमान समय जो भी सुख सुविधा के साधन हैं, क्या हमें साधनों के बिना जीना है? किसका त्याग करना है? तो साधन सेवा के लिए है, साधन साधना के लिए भी आधार है। अगर हम साधनों को केवल सेवा का एक आधार समझ करके चलते हैं तो ये साधन हमें मुक्त स्थिति का अनुभव कराते हैं। वैराग्य का मतलब है सर्व सिद्धियां प्राप्त होते हुए भी मन और बुद्धि हद के आकर्षणों में आकर्षित न हो। साधन आवश्यक हैं, लेकिन देखने में आता है साधनों का उपयोग करते करते आज दुनिया के अंदर लोग इतना बंद गए हैं कि अब उन्हें उनके बिना जीना मुश्किल लगता है। लेकिन कहां कहां ब्राह्मण परिवार में भी इन साधनों का प्रभाव पड़ रहा है, और उसमें भी सबसे बड़े से बड़ा और खतरनाक साधन जो हमें हमारी साधना से दूर करता है या हमारे मन और बुद्धि को एकाग्र करने में विघ्न बाधा रूप बनता है, वो साधन है। कौन सा साधन है? मोबाइल। हमारे कई भाई बहने बड़े प्यार से जवाब देते हैं, हम इससे बहुत अच्छी सेवा करते हैं। कईयों का तो नियम है अमृत वेला करने के बाद में गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजना। अच्छा, मैं एक जगह गई थी, पट्टी की क्लास थी। क्लास पूरा होने के बाद कुमारी आई, मुझे बोली, दीदी आपने बहुत अच्छा क्लास कराया, मैंने आपका क्लास अपने ग्रुप में सबको भेज दिया। अच्छा, हमारे बहुत भाई बहने, उसका क्लास आया, उसने आपको भेजा, आपने दूसरों को भेजा, सारा समय हम भेजने का काम करते रहते। थोड़ा सा गहराई में जाकर के अपने आप से बात करें, अगर हम भेजते ही रहेंगे, आपने उनको भेजा, उन्होंने उनको भेजा, उन्होंने उनको भेजा, तो धारणा कब करेंगे? हम सब समझदार हैं और हम जानते हैं कि आज का जीवन मोबाइल के बिना नहीं चल सकता है, हम लोग को भी यूज करना पड़ता है। केवल ध्यान इतना रखना है, ये आपके मन बुद्धि को बांध ना दे, आप परवश आत्मा ना बन जाएं। दूसरों से हम प्रतिज्ञा करा करके छुड़ाते हैं, रात्रि को मोबाइल के बिना नींद नहीं आती, ये कर्म बंधन बंधा। वैराग्य वृत्ति क्या कहती है? वैराग्य के बिना ये संभव नहीं है त्याग। तब फिर बाबा ने कहा कि अब अपने मन और बुद्धि के राजा मालिक बनो। बाबा ने पहले दिन से ये पुरुषार्थ कर लिया था, मैं मालिक हूं, ये कर्मेंद्रियों का मैं राजा हूं, ये आंख कर्मचारी मुझे धोखा नहीं दे सकती है, ये मुख कर्मचारी मुझे चला नहीं सकता है। तो वैराग्य के बाद त्याग से तपस्या की, जिस तपस्या से सिद्धि प्राप्त की, और बाबा कर्मेंद्रिय जीत, विकर्मा जीत और कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सके। अब हम आप सबका भी लक्ष्य वही है, हमें बाप समान बनना है। तो बनने का पहला पुरुषार्थ, बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे कर्मेंद्रिय जीत बनना ये तो मोटा पुरुषार्थ है, बाबा की दृष्टि से वो मोटा पुरुषार्थ है। हम अपने आप से पूछें, हमने इन इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त की है? सूक्ष्म पर पीछे चलते हैं, भले वायुमंडल क्या भी हो, मुझे भगवान ने वरदान दिया है, समान दिया है, तुम प्रकृति जीत प्रकृति को बदलने वाले हो, तुम वृत्ति से वायुमंडल बदलने वाले हो। मैं वो हस्ती हूं, मैं परमात्मा का वो पैगंबर हूं जिसकी इस दृष्टि से ये सृष्टि बदलने वाली है, ना कि ये तमोगुणी वातावरण मेरी वृत्ति को बदलते। मैं कर्मेंद्रिय जीत हूं, हर रोज बाबा हमें ये पढ़ा रहा है। बच्चे, सबसे जास्ती धोखा देने वाली आंखें हैं। हम पूछें, ये सिविलाइज्ड हैं? भले हमें विकारी दुनिया विकारी दृष्टि हमारी नहीं है, लेकिन नैनों में इतनी रूहानियत है, क्योंकि बाबा अब ये चाहता है केवल मेरा पुरुषार्थ मेरे लिए नहीं है, अब हमें अपने लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, हमारा पुरुषार्थ है विश्व की अन्य आत्माओं के लिए। तो मेरी जो दृष्टि में परिवर्तन आया, रूहानियत आई, उस रूहानियत से सामने वाले की अपवित्र दृष्टि परिवर्तन हो, ये हमारी सेवा है। मुझे वातावरण बदले वो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन मैं ऐसी अशुद्ध आत्मा को भी, खराब दृष्टि वाली आत्मा को भी अपनी इस पवित्र दृष्टि की शक्ति से परिवर्तन करूं। ये गहन साधना से शक्ति आएगी। क्या वो त्याग तपस्या बाबा भी हमारे से चाहता है? इतनी सूक्ष्म बात से और मोटी, एकदम मोटी बात पर आती हूं। इन कर्मेंद्रियों के ऊपर, आंख पर हमारा कितना कंट्रोल है। हमारी गुलजार दादी हमेशा कहती थी, जब क्लास में बैठे हुए हो, एक बार कॉन्फ्रेंस हॉल में भट्टी की क्लास चल रही थी, तो बारिश शुरू हुई, तो जो गेट के पास में बहने बैठी थी ना, उन्होंने ऐसे बाहर देखना शुरू किया। पहले तो दादी ने एक बार ऐसे देखा, देखने के बाद में भी उनका ध्यान इधर नहीं आया, तो दादी कहती है, मेरे को ये आश्चर्य लगता है, वो प्रकृति ने अपना काम शुरू किया, तुम तो भट्टी करने के लिए बैठी, तो तुम्हारी दृष्टि वहां क्यों गई? आप पूछो अपने से, आपका इस दृष्टि पर कंट्रोल है? यहां मुरली क्लास चल रहा है, एक व्यक्ति यहां से पास हुआ, जब तक वो गेट के बाहर नहीं जाता है, कितनों की, सबको नहीं कहती हूं, हम उसको देख रहे हैं। ये हमारी तपस्या। बाबा ने तो मुरली में कहा कि ये तो मोटी बात है, अब जो हमें जीत पहननी है, वो बाबा ने कहा इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजय पानी है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन पर हमारा संपूर्ण कंट्रोल, मन की मैं मालिक हूं, मन मेरा मालिक नहीं है। अब ये नॉलेज आपको भी है, इसे हमें रियलाइज करना है। मेरा इस पर कितना कंट्रोल है? जिस समय जो संकल्प हमें चलाना हो, वो संकल्प हम चला सके। हर एक का इसमें परसेंटेज हम सब का अपना अपना होगा, लेकिन जब तक कंट्रोलिंग पावर नहीं आएगी, तब तक रूलिंग पावर नहीं आएगी। हम इन इंद्रियों पर शासन नहीं कर सकते। बुद्धि, हर एक की बुद्धि बहुत शार्प है, हम बहुत अच्छी रीति से समझते हैं और कहते भी हैं, मैं सब समझता हूं, मैं सब जानता हूं, लेकिन इस पर हम जहां जितनी आवश्यकता है उतना उसको यूज करें, वो कंट्रोल। और अगर हमारा बुद्धि के ऊपर कंट्रोल है तो सबसे पहले बाबा कहता है आपकी निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति पावरफुल होगी, सेकंड में और राइट निर्णय ले सकेंगे। संस्कार, जो बार बार स्वभाव और संस्कार हमें धोखा दे रहे हैं, हम जानते भी हैं, हम समझते भी हैं ये मेरा गलत संस्कार है, लेकिन फिर भी परवश और अधीनता का संस्कार बाबा उसको कहता है। अब हमें अधीन नहीं, स्वराज्य अधिकारी बन करके विश्व राज्य अधिकारी बनना है। तो बेहद की वृत्ति बाबा ने कहा कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति, सर्व शक्तियों पर संपूर्ण अधिकार, उसको बेहद वृत्ति कहेंगे। वैराग्य वृत्ति भी बेहद की वृत्ति चाहिए। इंद्रिया तो हद में आ गई ना, ये बेहद है। तो जब बेहद की हमारी वृत्ति बनेगी तब हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो स्वभाव और संस्कार हैं, इनको परिवर्तन करने के लिए जब तक अंदर से वैराग्य नहीं आएगा तब तक ये संस्कारों में बार बार ज्ञान से दबाएंगे, योग से कंट्रोल करेंगे, परिस्थिति आएगी तब उछल खा करके बाहर आएंगे, परिवर्तन नहीं होगा। बाबा ने कहा है कि ये दो शब्द हैं जो हमारी स्थिति को बिगाड़ते हैं, और वो हम सब जानते हैं, वो दो शब्द हैं मैं और मेरापन। घड़ी घड़ी मैं, और विधि भी सब जानते हैं, मुरली भी आप सबने पढ़ी हुई है। मैं को क्या करना है, मैं आत्मा हूं उसमें परिवर्तन करना है। मेरे को क्या करना है, मेरा बाबा। अभी भी आप सबने कहा मेरा बाबा, ऐसे भी बोलते होंगे मेरा बाबा, लेकिन मेरा बाबा की जगह जब मैंपन आता है जो हमें अधीन बना देता है। बाबा ने मुक्ति की युक्ति बताई है, हमेशा कर्म करते हुए ऐसा समझो कि करावन हार करा रहा है, कर्तापन नहीं। हम सब कोई भी कार्य करते हैं, हर ब्राह्मण के मुख से निकलता है बाबा करा रहा है, निकलता है बाबा ने कराया, लेकिन भूल कहां करते हैं। जब बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, श्रेष्ठ फल मिले, कर्म श्रेष्ठ किया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने के बाद भी आत्मा में कमजोरी आ जाती है, और वो कमजोरी है मैंने किया। सबको पता पड़ना चाहिए ये बंधन, परवशता, अधीनता। ध्यान क्या रखना है, जैसे कर्म के समय पर याद रखा बाबा करा रहा है, वैसे फल के समय भी हमें याद रखना है बाबा ने कराया। गीता बार बार क्या कहती है, एक श्लोक सब जगह पर, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। तो ये ज्ञान किसका है? हमारा है। कर्म में जैसे बाबा याद रहा, फल में फट से आता है जब चारों तरफ से लोग कहते हैं, बहन जी आपने तो बहुत अच्छा किया, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी होगा, ये आपने इतनी अच्छी सेवा की। उस समय पर ये सोया हुआ मैं, ये जागता है और हम क्या कहते हैं, हम भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। बात तो आपकी राइट है, सच में अगर मैं इस ढंग से नहीं करती थी ना तो ये होने वाला ही नहीं था। क्या किया? कर्म श्रेष्ठ किया और फल जमा नहीं हुआ, कच्चा खा करके पूरा कर दिया। एडिशन क्या करना है? फल के समय पर तेरा तुझको अर्पण, वो जो मैंने सेवा की, जिसको मैं कहती हूं मैंने की, किसने कराई, उसमें शक्ति किसने भरी, सफलता किसने दिलाई, किसने? बाबा ने। वहां हम बाबा भूल जाते हैं। मैं बहुत छोटी थी, 72 की बात है, मधुबन में रहती थी, तो मैं दादी जानकी को एक बारी बोला, दादी ऐसे क्लास कराया था कि कोई महिमा करे तो महिमा को स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो अब छोटी थी, बुद्धि इतनी समझ नहीं थी, तो छोटे होने के कारण से सब मधुबन में मुझे प्यार करते थे, कोई भी सेवा करके आती थी सब दादी को बोलते थे सरला ने बहुत अच्छी सेवा की, तो मुझे खुशी होती थी। तो मैंने जब दादी ने कहा महिमा को स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा दादी सब महिमा करते हैं तो मैं क्या करूं? दादी ने इतना अच्छा जवाब दिया, मुट्ठी वो तो उनका काम है, बड़ों का काम क्या है? क्योंकि मैं छोटी थी ना, छोटों की महिमा करना, तुमने अच्छा किया है तो अच्छा कहेंगे, लेकिन तुम्हारा काम क्या है, उसको बाबा पर समर्पित करना, समझा? आपके द्वारा अच्छी सेवा हुई है, जरूर लोग कहेंगे ना कि भाई आपने बहुत मेहनत की है, वो अपनी जगह राइट है, लेकिन मैं अपने राइट को छोड़ देती हूं, उसको एक्सेप्ट कर लेती हूं। इन सब सूक्ष्म कमजोरियों को खत्म करने के लिए बेहद का वैराग्य है। तब तक ना स्वार्थ वृत्ति जाएगी ना संग्रह वृत्ति जाएगी। हम ज्ञान के आधार से, हम सब मास्टर नॉलेजफुल हैं, मैं नहीं समझती इतने छोटे बच्चे को भी आज ज्ञान नहीं, इतने YouTube भरे पड़े हैं, इतने क्लासेस, इतनी भट्टियां चल रही हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ये 3 दिन सब यहां बैठ करके मुझे बाप समान बनने के लिए इस श्रेष्ठ तपस्या की स्थिति का अनुभव करना है, अपने उस वैराग्य की ज्योत को जगाओ समझ से, ज्ञान को खुद बैठ करके पढ़ाओ। हम सब भाषण में ठोक ठोक करके कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं, हम अगर अब संपन्न नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे, और इन्हीं छोटी बातों में सामने सामने मैंने किया, तुमने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा क्यों करता है, ये नहीं करना चाहिए, ये सब हद की और संकुचित बातें आप सबकी समझ में नॉलेज में है, लेकिन मेरा आप सबसे ये विनम्र अनुरोध है, जब ये 3 दिन आपने निकाले हैं तो यहां एकांत में बैठ करके इंडिविजुअल अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ, बहुत गहनता से, गहराई से सूक्ष्म कमियों को खत्म करके गहरी साधना से और बाप समान अपनी स्थिति को बना करके यहां से जाएं। बाबा का वरदान है, ना श्रेष्ठ संग है, तो जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। अवश्य आपकी भट्ठी अन्य भट्ठियों से नवीनता और रहस्यों से भरी हुई आप महसूस करके जाएंगे। ऐसी श्रेष्ठ शुभ और मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति।
आदरणीय सरला बहन जी का हम सभी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सूक्ष्म बातों को आपने आज हमें अंडरलाइन भी कराया है और भट्ठी के लिए हमें बहुत ही गहन प्रेरणाएं भी आपसे मिली है। एक बार फिर आज इस कार्य के लिए विशेष हम सब के बीच उपस्थित होने के लिए आपका शुक्रिया।